तू क्या कर रहा है यह स्त्री आंदोलन। हमारे शहर में एक अच्छन्न खान थे। जहाँ कहीं कोई मुसीबत होती थी वे वहाँ बाल्टी बोरा अग्निशाम बालू दिलजोई की अजब बातों की डलिया और सब पहुँचाने का सामान लिए पहुँच जाते थे। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि जिसकी तरफ मदहोशी में वे दौड़ते हाँफते पहुँच रहे हैं वह हिंदू है कि मुसलमान, देशी है कि विदेशी, औरत है कि मर्द, अमीर है कि गरीब। उनका कोई अपना वर्ग चरित्र न था, कोई तयशुदा आलोचनात्मक औजार न थे। उनके झोले में एक बेख्याली और बेचैनी सी थी जो उनकी अपनी थी और कुछ अपना न था, इसलिए वे कोई नहीं थे। यही स्थिति आज स्त्री आंदोलन की है, शेखाओं के डार्लिंग की सी स्थिति, अपने इन अच्छन खान की सी स्थिति, जो जहाँ भी परितप्त है स्त्री आंदोलन उससे जुड़ जाता है। छठे दशक में लिबरल फेमिनिस्ट उदार नारीवादी परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए जी जान से खटी। सातवें आठवें दशक में रेडिकल फेमिनिस्ट आमूल चूल नारीवादी जुड़ी अश्वेत आंदोलन से। नवे दशक में दलित आंदोलन और पर्यावरण रक्षक अभियानों से उनका स्पष्ट जुड़ाव रहा। अभी वे भूमंडलीकरण से जूझ रही है। दरअसल हुआ यह कि स्त्री आंदोलन की शुरुआत लिबरल विचारधारा के साय में हुई, जो यह मानता था कि मानव मात्र तार्किक है, इसलिए उसका संस्कार प्रक्षालन संभव है, हृदय परिवर्तन। बाद के अनुभव से यह बात खंड सत्य लगने लगी तो उदारता विरोधी अतिरेकों की बात होने लगी। जो भी हो, लब्बो लुआब यह कि तीसरी दुनिया के छोटे से छोटे शहर में आज स्त्रीवादी संगठन अद्भुत कर्मठ ढंग से काम कर रहे हैं। विश्व भर के अखबारों और अब तो इंटरनेट से भी स्त्री विषयक सब समाचार व्यवस्थित ढंग से डाउनलोड किए जाते हैं। अलग अलग क्लिपिंग्स की अलग अलग फाइलें तैयार होती हैं, उनका सामूहिक अध्ययन होता है, केस स्टडीज तैयार होती हैं, तदनुकूल दबाव समूह और कार्रवाई समितियाँ बनती हैं, अकादमिक दुनिया के लोगों से संपर्क सेतु गठित कर संघर्ष के बृहत्तर सैद्धांतिक आयाम उसी दत्तचित्तता से विमर्श के दायरे में लाए जाते हैं जिससे आचारों बड़ियों और बेस्वाद संबंधों को चटपटा बनाने के नुस्खे, जीवन के तथाकथित छोटे और महत्वहीन प्रसंगों का तार बृहत्तर सच्चाइयों से जोड़ना, कॉमन प्लेस का तार कॉस्मिक से ग्लोबल का लोकल से जोड़ पाना स्त्रियों के वश का था और उन्होंने साधा भी। एक विकट बहस जो स्त्रीवाद को लेकर इधर उठ गई है वह यह कि अलग अलग जातियों और वर्गों और नस्लों की स्त्रियां अलग अलग ढंग से परितप्त हैं। उन सबकी समस्याएं जब अलग अलग हैं तो उनका समाधान एक सा कैसे होगा? एक दलित स्त्री का सच एक ब्राह्मणी विधवा के सच से अलग होगा। एक सेठानी की समस्याएं उसकी महरी से अलग होंगी। अगर वे एक दूसरे के दुख सुख किसी उदात्त सखी भाव में बांट भी लेती हैं तो क्या? एक दूसरे से कंधे पर सिर रखकर रो लेना समस्याओं का समाधान न भी हो तो समाधान की दिशा में उठा पहला कदम यह सखी भाव अवश्य है। मनोवैज्ञानिक दीवारें यह सखी भाव भी ही गिराता है और बिना मनोवैज्ञानिक दूरियां पाटे तो हो चुकी क्रांति, विशेषकर भारत जैसे संक्रमणशील समाज में जो गवई है और नागर भी, धार्मिक है और धर्मनिरपेक्ष भी, प्रगतिमुखी है और प्रतिगामी भी। वर्ग हितों के ऊपर उठ पाना मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। स्त्री आंदोलन ने यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिखाया है। नस्ल, वर्ग, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म आदि उपविभेद कॉन्स्ट्रिक्ट वलयों की तरह एक दूसरे को कहाँ काटते कहाँ पाटते हैं यह साफ साफ समझ पाना आसान नहीं, पर इन संकीर्ण बद्धताओं के बावजूद विश्व भर की स्त्रियाँ बहने तो हैं। एक अमीर औरत गरीब की, गोरी औरत काली की सौतेली बहन भी मानी जाए तो उनमें सगेपन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दैहिक शोषण का साझा सच तो सबका है। सोवियत रूस में अलेक्जेंड्रा कोलोताई आदि नारीवादियों ने जब प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लेबर को साथ गिने जाने की बात की और घरेलू बेगार को अनपेड लेबर की श्रेणी में डालकर उसे शोषण का सामान बताया तो कॉमरेडों के एक समूह में यह भय पनपा कि वर्ग के अतिरिक्त किसी श्रेणी का यह स्वीकार गरीब औरत और धनी औरत की उभयनिष्ठ समस्याओं के रेखांकन द्वारा ने करीब ले आने की कोशिश कहीं न कहीं क्रांति धर्मिता की शत्रु सिद्ध होगी, किंतु उनका यह भय निर्मूल था। दैहिक और मानसिक शोषण, साधनहीनता और राजनीतिक वर्चस्व के अभाव में कोढ़ का खाज हो जाता है, पर कोढ़ अपने आप में कम कष्टकर तो नहीं। बलात्कार, भावहीन यांत्रिक संभोग, मारपीट, गाली गलौज, यौन शोषण आदि उत्पीड़न उसी बेचैनी से हर वर्ग की औरतें झेलती हैं। कहते हैं, प्रेम न जाने जात कुजात, भूख न जाने रोटी भात। दिल की चोट के लिए यही बात लागू है। अपमान झेलते झेलते एक बिंदु के बाद मन कुंद जरूर हो जाता है, पर कलेजा मुंह को आने का भयावह अनुभव या रोम रोम कलप उठने की त्रासद अनुभूति मानव मात्र में निराशा, कुंठा या पत्थर हो जाने का एहसास भरती तो है। जैसे खून का रंग एक है, आंसू का स्वाद भी पूरा पश्चिम गरीब अमीर का भेद कम से कम औरतों और संवेदनशील पुरुषों के संदर्भ में यहाँ कारगर नहीं। कुछ कच्चे प्रगतिशील इस बात पर स्त्रीवाद का मजाक उड़ाते हैं कि यह वर्ग विभेद का तन्वीकरण करता है। स्त्रीवादी आलोचना का उत्तर संरचनात्मक तंत्र उन्हें कहीं का ईंट कहीं का रोना लगता है, जबकि यह बात उन्हें समझनी चाहिए कि नए तथ्यों के आलोक में मार्क्स का पुनर्पाठ मार्क्स को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि मार्क्स की इन मूल स्थापनाओं का अवदान स्वीकारता है स्त्रीवाद। मनुष्य के अस्तित्व की सार्थकता प्राकृतिक साधनों से उसके सर्जनात्मक अंतर्क्रियात्मक संवाद में है। कोई भी भूमिका जो लेबर या काम के मूलाधिकार से वंचित करे शोषण परक है। पूंजीवादी व्यवस्था का केंद्र है अहमवादी, ठिगना, लालची, भोगभाव, इसके खिलाफ संघर्ष समवेत होना चाहिए। स्वार्थपरता और क्षुद्रता जानने वाला पूंजीवादी मंडल एकाकीपन आदि रोगों का जनक भी है। परिवार, प्रेम, यौनिकता और नैतिकता की नई परिभाषाएं गढ़ते हुए इन मानसिक रोगों के निराकरण का यत्न होना ही चाहिए। स्त्रियों से अधिक इस बात का मर्म और कौन समझ सकता है? संबंधों का मर्म समझ पाने की अंतः प्रज्ञा के कारण वर्ग, जाति, नस्ल आदि के विभेद मूलक सौतेलेपन के बावजूद आपस का सगापन रेखांकित करती हैं स्त्रियां। इन्हें टुकड़ा टुकड़ा बांटना स्त्रीवाद के खिलाफ एक षड्यंत्र ही कहा जाएगा। सबको साथ लिए चलने की कोशिश एक जटिल विजन का हिस्सा है। सबको यूनिफॉर्म पहनाकर परेड के लिए खड़ा कर देना स्त्रीवाद का मंतव्य कभी नहीं रहा। अलग अलग समस्याओं, अलग अलग व्यक्तियों की सजग मान्यता के बावजूद विश्व भर की स्त्रियां एक तो हैं ही देह और दैहिक उत्पीड़न के अनगिन बिंदुओं पर, कहीं न कहीं मानसिक बनावट भी इनकी बेहद मिलते जुलती है, जिसे मैन मैनेजमेंट के शास्त्रज्ञ इमोशनल इंटेलिजेंस कहने लगे हैं। वह औरतों की बहुत बड़ी ताकत है और यही है उनके भगनी भाव का मूलाधार, जो इनका मुंह चिढ़ाते हैं। उन्हें आईने में एक बार अपना चेहरा देखना चाहिए। स्त्री आंदोलन ममता का विस्तार। कुल मिलाकर यह कहें कि दुनिया के कुछ महादुख हैं, दारिद्र्य, कलह, परिजन प्रियजन की मृत्यु, रोग, गलतफहमियां, वियोग, आत्माभिव्यक्ति का अभाव, अनिश्चय, भूख, अपमान और आतंक। बौद्ध भिक्षुणियों की धीरज से स्त्रियां महादुखों के निवारण में तन मन धन से लगी हैं। तन मन धन पर गौर कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, तन मन से तो स्त्रियां पहले भी लगी रहती थीं पूरे घर को खुश करने में। इन दिनों अपने कमाए हुए धन का विनियोग भी वे कर देती हैं। इस प्रकार शब्दशः तन मन धन से वे सेवा में ही लगी रहती हैं और सिर्फ अपने घर की सेवा में नहीं, उन सारे घरों बेघरों की देखभाल में जो उनके संपर्क में आए। इस तरह से अपने घर का दायरा उन्होंने बहुत बढ़ा लिया है। पूरी वसुधा नहीं भी तो एक मिनी माइक्रो वसुधा अब उनका घर है। वे अब बेदरो दीवार घर में रहती हैं जहाँ कोई उनका बेगाना नहीं। पड़ोसी, सहकर्मी, अखबार वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, पाठक, श्रोता, छात्र, क्लाइंट, मरीज, गाड़ी चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, माली, परचून की दुकान वाले, सेल्स गर्ल, सेल्स बॉयज, LIC एजेंट, कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, डाकघर और पुस्तकालय के लोग, कुरियर वाला, साधु फकीर, बसमेट, पुराने सहपाठी, मायके ससुराल के सभी सरल चित्त लोग, कबाड़ी, कुछ अनाथालय और स्त्री सदन, थोड़े से वृद्धाश्रम, बच्चों के शिक्षक और कोच, कम से कम इतने लोगों से तो उनके एकदम सच्चे अंतरंग दूर तक चलने वाले रिश्ते बनते ही हैं। सबके सुख दुख, सबकी हारी बीमारी में वे शामिल होती हैं। गौर कीजिए, इनमें से कोई भी रिश्ता नर मादा वाला रिश्ता नहीं होता, सहज बहनापे का रिश्ता होता है। फ्रांसीसी क्रांति ने भाईचारे की बात की और बहनापे को उसमें शामिल समझा, जबकि दिनानुदिन के अनुभव से भी आप ये साफ समझते हैं कि बहनों का स्नेह भाइयों के स्नेह से कहीं ज़्यादा मुखर और गहरा होता है। किसी मनोसामाजिक कारणों से पुरुष क्रोध और नफरत की अभिव्यक्ति तो खुलकर करते हैं और कोमल भावों का प्रकाशन खासतौर यौनेतर संबंधों में उनकी अपनी हेठी जान पड़ती है। थोड़ी सी भी कहीं असुविधा हुई, मान लीजिए कि गाड़ी ही कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गई या खाना मन लायक नहीं बना, तो पटापट जैसे कड़ाह की तपती बालू में मकई के लावे फूटते हैं, उनके मुँह से गालियाँ फूटने लगती हैं, एक से एक भयावह गालियाँ। किंतु कृतज्ञता और स्नेह की अभिव्यक्ति उनको जरूरी नहीं जान पड़ती। उस समय उन्हें गलाबखोर लग जाता है वो अकबका जाते हैं। बीमारी, बीमार माँ या उदास बहनों के सिर पर आश्वस्ति परक हाथ रखना, उनसे हृदय खोल कर बातें करना उनको बिल्कुल जरूरी नहीं लगता। पत्नी और बच्ची के प्रति किसी किसी का व्यवहार थोड़ा नरम होता है, किंतु तभी तक जब तक पत्नी नई हो और बेटी बच्ची यानी कि उनका जीता जागता खिलौना, उनकी स्माइली वॉकी टॉकी, उनकी गुड़िया। विवाह के पहले माँ और बहनें भी थोड़ी सगी होती हैं, पर विवाह के बाद तो पूछिए मत। कहने को लड़कियाँ विदा होती हैं, पर मन से विदा होते हैं लड़के। डोली चढ़ते ही उनका मन डोला पाए पाए हो जाता है, मुड़कर देखना भी नहीं चाहता। अग्रसूची सदा सुखी का दर्शन वे शब्दशः आत्मसात कर लेते हैं, मगर उनकी सोच का दायरा सीमित होता है। उनका मय सर्वसमावेशी नहीं होता, उसमें शामिल होते हैं सिर्फ उनका कैरियर और उनके बीवी बच्चे। वे भी तब तक जब तक वे उनकी पूरी गिरफ्त में रहें। उठने को कहें तो उठें और बैठने को कहें तो बैठ जाएं। ये बोले कि सूरज पश्चिम में उगता है तो वे कहें जी जी जी। जो भी अलग सोच रखता है या अलग होता है, उसके प्रति मन में तरह तरह के डर और अपडर पैदा होते हैं। वीरता पौरुष का आधार स्तंभ है, किंतु वीरों की हिंसा पार्श्विक हिंसा नहीं होती। मनोविज्ञान यह बताता है कि हिंसक मर्दों के दिल में एक चूहे की जान बसती है। जरा सा कोई अपनी गति चला या कोई पत्ता उनकी मर्जी के खिलाफ खड़का तो उनकी फूंस सरक जाती है। तरह तरह के अंधी आशंकाओं से उनका मन घिर जाता है। ये मुझसे अलग है, मेरा दुश्मन ही होगा, इस तरह का एक भ्रम उनके दिल में हल हल करने लगता है। पूर्वग्रह और भ्रांतियाँ यहीं पर जड़ पकड़ती हैं, यहीं जड़ पकड़ती हैं रूढ़ियाँ। इन्हीं अब डरों से यहीं शुरू होती है अदरिंग, जो मेरे जैसा नहीं है वह दुश्मन है। दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ है यही एक विभ्रम। निर्धनों, स्त्रियों, अल्पसंख्यकों, दलितों और अश्वेतों के बारे में जितनी रूढ़ियाँ इस समाज में पलती हैं उसका कारण भी यही है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि स्त्री मुक्ति एक नारा है, आंदोलन नहीं। पर कहने का क्या, आंदोलन का अभिक्षिप्त अर्थ सिर्फ सत्ता परिवर्तन यदि लगाया जाए तब तो जितने भी अस्मिता आंदोलन हैं नारा की कारा में ही बंद रह जाएं। पर्यावरण परिरक्षण को निवेदित नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन, रंगभेद की निवेदित नेग्रीट्यूड मूवमेंट, अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट, दुनिया भर के छात्र आंदोलन, लिबरल फेमिनिज्म द्वारा ही उत्प्रेरित निःशस्त्रीकरण आंदोलन, मानवाधिकारों के लिए दुनिया के हर कोने में जितने भी दबाव समूह काम कर रहे हैं, अभिजन समाज के प्राण हैं वे। उनके प्रति ऐसा टालू रवैया हम रखेंगे तब तो भूमंडलीकरण के बाद की एक ध्रुवीय दुनिया सांसत और फांसत में फंसी हुई ठीक से घिघिया भी नहीं पाएगी, नारों की तो छोड़ ही दे। नारों के प्रति भी इतना नकारात्मक रवैया अपनाने की जरूरत क्या है। नारी आंदोलन का कवित्वमय पासवर्ड होते हैं, जैसे मंत्र कॉस्मोस की देवोपम ऊर्जा तक पहुंचने के अंतः सूत्र, जिनको हम सत्ता परिवर्तन के पारंपरिक अर्थों में भी आंदोलन क्या क्रांति ही कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति, उन्हें भी याद तो उनके नारों के कारण ही किया जाता है। जो राजनीतिक सत्ता उन्होंने पलटी थी उस पर तो प्रतिगामी शक्तियां हावी हो गईं, मगर फ्रांसीसी क्रांति के नारों के दम पर आज भी दुनिया के सारे प्रजातंत्र सांस ले रहे हैं। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, स्वतंत्रता, भाईचारा और समता हम सबके जीवन का मूल मंत्र अब तक है। स्त्री आंदोलन ने भाईचारे को बहनापे का विस्तार दिया है। यूनिवर्सल सिस्टरहुड का नारा देकर आईक्यू का परिष्कार, आईक्यू यानी इमोशनल कोटिनेंट के रूप में घटित करके करुणा संबलित अहिंसक न्याय दृष्टि WTO से ITO तक युद्ध और दंगों की दहशत से लेकर चौक, दफ्तर और बिस्तर की दहशत तक प्रस्तावित करके। पता नहीं कि इस महामूढ़ ने यह कहावत प्रचारित की कि जो गरजते हैं बरसते नहीं। प्रकाश की रफ्तार ध्वनि से ज़्यादा होती है, इसलिए बिजली चमकती दिखाई देती है, पहले गरज तरज पीछे सुनाई देती है। आंदोलन की प्रक्रिया जरा उल्टी है, यहाँ नारों का ऊर्ध्वाह उद्घोष सुनाई पड़ता है पहले और परिवर्तन की चमक नजर आती है बाद में। पर कुछ लोग जो आंख पर पूर्वग्रह की पट्टी और कान में यथास्थितिवाद की ठेपी पहने बैठ जाते हैं, उनके बारे में बाइबिल पहले से कह गई है, सीइंग दे डोंट सी, हियरिंग दे डोंट हियर। चेतना का प्रक्षालन एक लंबी और द्रुह प्रक्रिया है, उसके प्रभाव नाटकीय नहीं होते। अब जैसे एक पेड़ लगाया तो पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा जरूर, पर एक ही बार में जलवायु बदल नहीं जाएगी। स्त्री आंदोलन, दलित या अश्वेत आंदोलन चेतना के परिष्कार को निवेदित अहिंसक आंदोलन है, इसलिए उसके प्रभाव सूक्ष्म जरूर हैं मगर हैं अटल और दूरगामी। जैसे माँ अपने गर्भ में हम सबको अपना खून, अपनी आत्मा का सत पिलाकर पालती है स्त्री आंदोलन। इक्यू संवलित नैतिकता के कोख में आतंक, हिंसा और पागल स्पर्धा के मारी इस दुनिया को स्नेह और ममता से सींच रहा है। मैं टॉनी मैरिसन, किरण बेदी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, मेघा पाडेकर, अरुंधति रॉय जैसे सितारों के दम पर कुछ कहना नहीं चाहते। टोकेनिज्म के खिलाफ है स्त्री आंदोलन, क्योंकि वह देश दुनिया के साधारण स्त्रियों को निवेदित है। खेत खलिहान में, मिलों में, चकला घरों में, चौकों में, चूल्हों में जुटी हुई साधारण स्त्री को, वे बेचारी नेक लड़की, मैं चुप रहूंगे, बेचारी दुख की मारी वाले भाव से तो ऊपर उठी है। कुछ तो उनमें अधिकार चेतना जगी है और मोर्चे पर डट कर खड़ी तो है, ईंधन पाने के लिए ही नहीं, डिग्निटी के लिए भी। शराबबंदी, बराबर पगार, बराबर शिक्षा, बराबर संपत्ति सार्थक मुद्दे हैं, इतना जो समझ सकी है तो स्त्री आंदोलन के ही दम से। स्त्री आंदोलन और स्त्री साहित्य के जगाए ही यह चेतना भी जगी है कि देह गाजर मूली नहीं, देह के प्रति खास तरह का स्वत्व बोध इसलिए जरूरी है क्योंकि देह उनके शोषण का प्राइम साइट है। मारपीट, गाली गलौज, बलात्कार, पर्दा, सती, डायन दहन, पोर्नोग्राफी, घरेलू बिगाड़, साफ सुथरे सुरक्षित प्रसव का अभाव, कम से कम अब इन पर हर्ष नहीं होती। आंगनबाड़ी की महिलाएं भी उठकर रिपोर्ट को दर्ज कराती हैं, पढ़ी लिखी महिलाओं का भी समर्थन मिलता है उन्हें। स्त्री आंदोलन की ही तो सफलता है कि ये कि वैयक्तिक यातनाओं का सामाजिक संदर्भन संभव हुआ है और गरीब से गरीब पद दलित स्त्री भी आंख मिलाकर कह रही है, हम भी मुख में जमान रखते हैं, कोई पूछे तो मुद्दा क्या है। नारा और आंदोलन एकजुट होकर भी सार्वभौम मूल बन जाते हैं। गरीब स्त्री को सबसे ज्यादा कष्ट झेलने होते हैं, पर देह से जुड़े दुख, मारपीट, गाली गलौज, देह का पण्य रूप में दारुण दोहन और प्रीतिहीन दाम्पत्य, हर वर्ग वर्ण स्त्री की साझा पीड़ा है। स्त्रियों का भाव कोष और सामाजिक संबंध कोष जीन्स के वायु गुण सूत्र और पालन पोषण की विशिष्टता के कारण पुरुषों से ज्यादा समृद्ध होता है। इसलिए स्नेह, सहानुभूति, सहकारिता और जी खोलकर बतियाने की क्षमता भी इनमें ज्यादा होती है। स्त्री विमर्श की परिधि के बाहर तो बेरोजगार पुरुष, वृद्ध, विकलांग और बच्चे भी जब नहीं है तो समुदुख भोगी अन्य स्त्रियां कैसी होंगी। रही साहित्य को खानों में बांटकर देखने की प्रवृत्ति, इस पर आपत्ति करने वालों को एक जवाब हमारे रसोई घर की मसालदानी देगी। एक बड़े डब्बे में अलग अलग खाने बने हैं, एक में धनिया है, दूसरे में मिर्ची, तीसरे में हल्दी, चौथे में जीरा, पांचवें में सरसों, छठे में गर्म मसाला, तो इससे खाने का स्वाद बढ़ता ही है ना, कम तो नहीं होता। सब घचपच कर दिया जाए तो अनुपात का अंदाज कैसे रहे, सारा मामला अनुपात का ही है। इतने दिन जो सब कुछ घचपच रहा तो अच्छी गृहस्थी चली क्या। दूसरी बात जो यहाँ स्पष्ट करनी जरूरी है वह यह कि साहित्य जजमेंटल होने से हमको बचाता जरूर है, पर लेखक की कलम न्यायाधीश की कलम भी होती है, दूध का दूध, पानी का पानी करने वाली। हमारी बहुतेरी अस्मिताओं में एक है हमारी लैंगिक अस्मिता, एक वर्ग और वर्ग अस्मिता, वर्ण अस्मिता, पर कुल मिलाकर यह अस्मिताएं मानवीय अस्मिता के भी प्रशाखाएं हैं। पेड़ प्रशाखा नहीं होता, प्रशाखाओं और एक मजबूत तने का समुच्चय होता है, पर पेड़ के विकास के हित में सारी प्रशाखाएं उखाड़ फेंकना न सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से उचित है न नीति शास्त्र की दृष्टि से। स्त्री लेखक मनुष्य भी होती है, दलित लेखक भी। मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए ही तो सब स्त्री विमर्श अपनी अपनी राह चल रहे हैं। चतुरंगिणी सेना के निकाय अलग हैं पर पक्ष तो एक ही है, मानवीय गरिमा की रक्षा। भूख और अपमान दुनिया के दो मूल दुखों का निराकरण, इसे शॉर्टकट कहना है इसका अपमान है। हम जहाँ हैं वहीं से तो शुरू करेंगे अपनी यात्रा, जो हमारे अपने अनुभव हैं वही बनेंगे बृहत्तर सत्य का गवाक्ष। सोचिए ऐसा घर कैसा दम घोटू होगा जहाँ दरवाजे हों पर खिड़कियाँ हों ही नहीं। माइक्रो ही मैक्रो का प्रवेश द्वार है, विशिष्ट से ही सामान्य की ओर बढ़ा जाता है और निजी से समूहित की ओर। तीन तरह की चुनौतियाँ हैं, पहली चुनौती जो खुद हम अपने को देते हैं अपनी जड़ताओं और गलदश्रु भावुकता के खिलाफ, दूसरी चुनौती जो घरेलू कामों के अनंत सिलसिले हमें देते हैं, सौदा सुलूफ, आए गए की देखभाल, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके नैतिक गुंजलक सुलझाना, बुजुर्गों की सेवा, पति की रंभा मंत्री माता लगातार ही बनी रहना, चौका चूल्हा, झाड़ पूछ, टेलीफोन उठाते रहने और दरवाजे की घंटी का जवाब देते रहने की जिम्मेदारी, बिजली, टेलीफोन, गैस और बच्चों की स्कूल फीस जमा करने का दायित्व सब स्त्री के ही जिम्मे रहता है। जरा से कहीं चूक हुई नहीं कि सब काट खाने को दौड़ते हैं, और अगर कहीं नौकरी पर भी जाना हो तो लिखने पढ़ने का समय चुराना पड़ता है। रात में सबको सुलाने के बाद या सुबह सबके जगने के पहले गोपियां कृष्ण से मिलने जाती थी, हम अपनी कलम किताब लिखने से सुख दुख बतियाने निकल जाती हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। लाइट से किसी की नींद न टूटे, खटका न हो, कितना अच्छा है भाई की कलम चुपचाप चलती है और कहीं भी अंट जाती है। तीसरी चुनौती हिंदी पब्लिक स्फीयर की है, जो अब तक काफ़ी पिछड़ा हुआ है। एक तो कोई स्त्री के लिखे हुए को उसका अपना लिखा हुआ मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ किसी की चार रचनाएं प्रकाश में आई, तरह तरह की लंतरानियाँ चल पड़ती हैं कि ये तो फला प्रकाशक या संपादक शीला हमारी लेखक के पांव दबा दबा कर इसने लिखवा ली है। अच्छी रचना है तो किसी न किसी मनचले सीनियर की कृपा का ही फल होगा, एक नाजायज संतान। किसी के पिता भाई चाचा ताऊ लेखक हुए तो फिर भी गनीमत है, इतना भर कहकर रह जाता है कि सिलाई कढ़ाई के नमूने की तरह लेखन कला के नमूने भी शादी ब्याह में बरतुहारों की खुशी के लिए रख दिए गए हैं, पर रचना का श्रेय इस स्थिति में भी उनको नहीं दिया जाता। शौक या लेखन खानदानी पेशा कहकर उसका मजाक जरूर उड़ाया जाता है। रिसेप्शन के सिवा मूल्यांकन की भी कई सीमाएं हैं। स्त्री जीवन पर फोकस करो तो स्त्रीवादी रोना धोना या चिल्पों कहकर खारिज किया जाता है। बेहतर समस्याओं पर लिखो तो कहते हैं निजी अनुभूति का सत्य ही नहीं है। कम लिखो तो कहते हैं कि दो कहानियां छपी नहीं कि लेखक कहलाने को मचल उठी। ज़्यादा लिखो तो कहे लगते हैं धक्काड़ लिखाड़, घर में कैसे झेलते होंगे इसको सब। गोष्ठियों में जाओ तो कहते हैं गुटबाज, न जाओ तो घर घुस्सू। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। यह पुरुषों का यथार्थ होगा, स्त्रियों का यथार्थ उल्टा है। पहले तो हंसी की फंसी से हंसी पर ब्रेक लग भी जाता था, अब तो हर बात पर हंस पड़ती हैं स्त्रियाँ। रुश्दी के देश निकाले से भी ज़्यादा भीषण तस्लीमा का निर्वासन रहा है। स्त्री की काया में दर दर भटकना कठिनतर तो होता ही है, कैसे यह उनकी आत्मकथा से स्पष्ट है। जानलेवा हमले के पहले स्त्री की गैरत पर भी लगातार हमले हुए तो हैं ही। राजनीतिक सेंसरशिप के सिवा गुड गर्ल सिंड्रोम का सांस्कृतिक सेंसरशिप भी स्त्री और उसकी सृजनात्मकता लगातार झेलती रही है। अब आए आर्थिक और राजनीतिक मसलों पर। दुनिया के अधिकांश स्त्रीवादी संगठन साम्राज्यवादी और फासिस्ट विक्षोभों का सस्वर विरोध करते हैं। दुनिया का इकलौता पूर्णतः अहिंसक आंदोलन स्त्री आंदोलन ही रहा है। जन्मदात्री यमदूतिका बने ऐसा शायद ही होता है। दक्षिणवर्ती पार्टियों के जो महिला विंग हैं, जैसे कि आरएसएस और बजरंग दल के, उनमें काली दुर्गा सिंड्रोम सुलगा कर विपक्षी को महिषासुर बताने की नादान साजिशें चली हैं जरूर, किंतु सद्य प्रकाशित कुछ केस विश्लेषण जाहिर करते हैं कि प्रचंड दंगों के दौरान भी धड़काने, हल्ला मचाने और थोड़ा बहुत वानरी लूटपाट मचाने तक तो स्त्रियां भड़कीं, किंतु कोंख चीरने, गला काटने, बम फोड़ने, छुरा भोंकने या गोली दागने की नीयत तक वे नहीं उतरी। योगिता ताई नामक के कार्यकर्ता जो बम्बई की झुग्गी झोपड़ियों की शिवसेना संबलित गॉड मदर थी, जीवन भर लोगों के झगड़े फसाद सुलझाती रह गई। बेगानों को धमकाया जरूर कि भागें, लोकल जनता की रोजी रोटी क्यों छीनते हैं, अपने देश जाएं, किंतु एक बिहारी ऑटो चालक को जब हल्की सी कसक पर सवारियों ने कूटा तो उसकी FIR दर्ज कराने पहले वही गई, फिर उसकी मरहम पट्टी भी उन्होंने ही की। सीधी साधी घरेलू स्त्रियां जिन्हें जीवन भर पितृसत्तात्मक परिवार दबा कर रखते हैं, ऋतुचक्र मुक्ति के बाद के दिनों में अचानक मर्दों का मर्द बन जाती हैं। चिड़चिड़ी सास आदि, आखिर क्यों रूप और यौवन को औरत के जीवन की केंद्रीय विभूति मानने वाला यह मर्दवादी समाज रूप और यौवन के पार तैर जाने वाली वैसे वरिष्ठ स्त्रियों के मन में गहरी असुरक्षा भरती है, जिन्हें अपनी कार्यत्री ऊर्जाएं विकसित करने का, अपना वृत्त बड़ा करने का अवसर मिला ही नहीं। मध्यवय तक आते आते और भी संकट घिर आते हैं। व्यस्त से व्यस्ततर हुए जाते पति पुत्रों के जीवन का केंद्र भी मध्यवय में ही नहीं रहती। उधर मायके में माता पिता गुजर जाते हैं और भाई बहन से संपर्क न के बराबर रह जाता है। वैयक्तिक मित्र बना पाने के कभी अवसर आते ही नहीं, न कोई अन्य शौक विकसित करने का मौका मिलता है। ऐसे में स्त्रियां कभी कभी परिवार का शक्ति केंद्र बने रहने के मर्दवादी हथकंडे अजमा लेती हैं, क्योंकि यही एक मॉडल है जो उनके सामने रहता है। लगातार दुश्मन के बारे में सोचते हुए कोई भी चाहे अनचाहे दुश्मन की रणनीतियाँ आजमाने लगता है। पुराने दुश्मनों का और बूढ़े पति पत्नी का चेहरा तक एक दूसरे से मिलने लगता है, ऐसा कहते हैं। होशियारपुर जिले की मस्जिदें बूढ़ी मुसलमान औरतों को मस्जिद में प्रवेश दे देती हैं। तर्क यह कि अब उनकी देह से युवा स्त्री की शैतानी ताकत निकल गई है, अब उन्हें पोट लिया जाए ताकि पितृसत्ता के एजेंट के रूप में उनका प्रवेश घरों में हो। हिंदुत्ववादी ताकतें युवा स्त्रियों को भी कसरत वसरत सिखाकर संस्कृति का पहरेदार नियुक्त करती हैं। शक्ति तो नहीं मगर शक्ति का विभ्रम और एक देवी सिंड्रोम सा उन्हें घेर लेता है। कल्पना कीजिए, दिन भर घरेलू गुलामी और अकारण जग जाने वाले मारपीट के भभूके झेलने वाले किसी गृहलक्ष्मी से किसी रोज कोई राजनेता सदलबल मिलने आया। ऐसा स्थानीय नेता जिसका अक्स प्रायः वह रोज स्थानीय दूरदर्शन पर या अखबार के दूसरे तीसरे पन्ने पर देखती। एक लंबे भावभोंकू भाषण के बाद उसने स्त्री को देश का सांस्कृतिक प्रतिरक्षक नियुक्त किया तो क्या होगा, उसकी सुसांस टंगी की टंगी रह जाएगी। नाटकीय महिमान्वयन से अभिषिक्त वह बेचारी अकबका जाएगी कि नहीं। पब्लिक एरिना में काम कर पाने के ख्याल से ऐसे चकाचौंध में पड़ेगी तो सहसा समझ नहीं आएगा। देश की खातिर काम करना संकीर्णता के दायरे में खींचना कैसे है। गांधी के समय भी तो स्त्रियां देश हित में सड़कों पर उतरी थीं। गली मोहल्ले में आए दिन राजनीतिक सम्मोहन के ये टुच्चे प्रयोग घटित होते हैं। समन्वित स्त्रीवाद तब उन्हें संबोधित करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि धर्म, संप्रदाय, मान्यता, नस्ल आदि अलग होना पराया होना नहीं है। 1857 का गदर, सूफी विरासत और दूसरी साझी परंपराओं के आश्रय यह समझा जाता है कि बंटवारे के वक्त तो एक बड़ा सा विकल्प और अवसर था। उस वक्त जिन परिवारों ने हिंदुस्तान में बसे रहने का अस्तित्ववादी जुड़ाव रेखांकित किया वे भला पराए कैसे। जो भी समझाया जाता है उसे हम इस पुराने श्लोक के तर्क में समेट सकते हैं जिसका सारांश है कि जिसने भरोसा किया उसे छलने में कौन सी बुद्धिमत्ता, जो गोदी में आकर सो गया उसे मार डालने में कौन सी बहादुरी। इसी प्रकार आर्थिक मोर्चों पर हम गौर करें तो पता चलेगा कि ज़्यादातर स्त्रीवादी संगठन पर्यावरण प्रबंधन और संरचनात्मक गत पूंजीवादी उत्थीपन में तो उनकी रुचि नहीं, सत्तामूलक वितरण की वे समर्थक हैं, किंतु साम्यवादी अधिनायक तंत्र ने प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, सामान्य लेबर और प्रसूति मूलक लेबर दोनों में स्त्री के दोहरे अवदान का सिला तो नहीं ही दिया गया था। लॉस ऑफ वाटर थियरी कोष्टक में इसके अंतर्गत मानते हैं कि स्त्री शरीर एक गिलास का पानी है और क्या, जब चाहे पियो और गिलास एक को लुढ़का दो, कोष्टक बंद आदि आश्चर्यजनक प्रपत्तियों द्वारा यौन कर्म का विरूमानीकरण करने से भी नहीं चूके थे। इसकी कसक स्त्रियों को अभी तक है, यह धीरे धीरे ही जाएगी, क्योंकि क्षमा और ममता स्त्रियों का मूल भाव है। बात को बहुत तूल देना वे नहीं चाहते, पर घाव भरते भरते ही भरते हैं।